ओम शांति। इस सेशन में हम कुछ वार्तालाप करेंगे, कुछ बातचीत करेंगे, या इसको कहें रू रिहान करेंगे। जैसे टॉपिक बता रहा, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशंस। तो इस सेशन में हम आप सभी का भी वेलकम करते हैं और हम रिस्पेक्टेड दिव्या बहन का भी इस सेशन में वेलकम करते हैं। एक योगी जीवन, एक तपस्वी जीवन, एक साधना की जीवन जो होती, तो ऐसे जीवन में कैसे विकास होता, कैसे रुचि दिनों दिन बढ़ती जाती है योग के प्रति, गुणों की धारणा के प्रति। और धीरे धीरे आगे चलते चलते जब हम इसको एक यात्रा के रूप में देखते हैं, तो यात्रा के रूप में देखते हुए ऐसा महसूस होता कि अब जीवन में सिर्फ हम अपनी ही जीवन नहीं बना रहे हैं, लेकिन अपनी जीवन के साथ साथ हम और अनेक जीवन तैयार कर रहे हैं। कुछ ऐसी ही यात्रा हमने बहुत करीब से दिव्या बहन को देखा है और कुछ उनकी ऐसी ऐसी बातें जो कहें कि हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशंस बीच बीच में हमें सेवाओं के बीच करने को मिलते, उसमें कुछ ऐसी बातें जानी हैं जो बहुत ही इंस्पायरिंग है, जो बहुत ही प्रेरणादायी है और बहुत ही जीवन को उन्नति की ओर ले जाने वाली हैं। इनमें से एक बात ऐसी है जो बहन हमें बताते हैं अपने जीवन के बारे में कि मुझे गुणों से बहुत प्यार है। तो मुझे याद आता जब पहली बार ये लाइन मैंने बहन के मुख से सुनी थी कि गुणों से बहुत प्यार है, तो इस लाइन ने, इन शब्दों ने बहुत गहरी छाप छोड़ी थी। मैं सोचने लगी कि कोई बोल सकता मुझे इस व्यक्ति से प्यार है, कोई बोल सकता मुझे प्रकृति से प्यार है, कोई ये कह सकता मुझे भगवान से बहुत प्यार है। ये बातें तो सुनी थी, लेकिन ये कभी नहीं सुना था किसी को कहते हुए कि मुझे गुणों से बहुत प्यार है। तो बहन, जब आप गुणों की बात करते हैं, गुणों से प्यार है, तो आपका गुणों से प्यार कैसे हुआ? और जैसे माँ के कई बच्चे होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं ये तो आ जाता कि मुझे इस बच्चे से सबसे ज्यादा प्यार है। तो हम जानना चाहेंगे कि गुणों से प्यार कैसे हैं और सबसे ज्यादा आपको कौन से गुण से प्यार है?
गुणों से प्यार की जो बात है, एक तो बचपन से ही जो अनेक व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं और उसमें हमें खुद को जो गुण युक्त व्यवहार होता है वो खुद को पसंद आता है। तो मैंने सोचा कि मेरे जीवन में भी लोगों को क्या पसंद आएगा, कि गुणों के आधार पर व्यवहार जो मुझे पसंद आता है वो मैं सोचती हूँ सबको पसंद है। और इसीलिए गुणों से प्यार। दूसरी बात ये भी है कि जहाँ गुण होते हैं वहाँ उस व्यक्ति के जीवन में एक अलग ऑरा होता है, उनसे एक अलग वाइब्रेशन फील होते हैं। मैंने ये भी पाया है कि वह कुछ न भी बोले या कोई व्यवहार न भी करे, लेकिन गुण भरी पर्सनालिटी वो भी व्यक्तियों को प्रभावित करती है, वो भी सुख देती है। उनकी पर्सनालिटी को देख करके ही खुशी होती है, आनंद आता है, एक सुख की अनुभूति होती है। और वैसी खुद की पर्सनालिटी बनाने के लिए व्यक्ति प्रेरित होता है। और इसलिए मुझे था कि मेरी जीवन भी ऐसी गुण युक्त होनी चाहिए और गुणों से प्यार था। और एक लास्ट बात कि परमात्मा है उनको सब प्यार करते हैं, सब चाहते हैं। क्यों? वो भी गुणों का भंडार है, इसीलिए सब जिनके जीवन में गुण है वो लोग पसंद बन जाते हैं, सबके प्रिय हो जाते हैं, सबके दिलों में उनका स्थान होता है। तो हम भी अपने जीवन को ऐसी क्यों न बनाए, इसलिए भी गुणों से प्यार था। और बहन ने जो पूछा कि सारे गुणों में से ऐसे हर गुण की अपनी अपनी वैल्यू है, गुण वैल्यू है उसमें की भी अपनी अपनी वैल्यू है, लेकिन सबसे ज्यादा पसंद मुझे मधुरता का गुण है, वो पसंद आता है।
तो जैसे बहन ने कहा, आप सबने भी ऐसे अनुभव किया कि जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व में, पर्सनालिटी में गुणों की ऑरा होती, उसको समझने के लिए कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं चाहिए, कोई भाषा नहीं चाहिए। क्या आप ऐसे लोगों से मिले हैं कि जिनको मिलकर ही ऐसे लगता कि इनकी पर्सनालिटी में गुण है? शायद आपने ज्यादा इंटरैक्ट भी नहीं किया हो, बट वी कैन फील दी वाइब्रेशंस। किए हैं ऐसे वाइब्रेशंस फील? और यहां से जब हम होकर जाएंगे तो हमारे द्वारा औरों को क्या फीलिंग आएगी? क्या लेकर आए माउंट आबू से? मधुरता लेकर आए। सो स्वीट। और भी गुण चुन सकते हैं, नम्रता है, सरलता है, हर्षित मुक्ता है, और मधुरता तो जरूर मिल जाए और लेकर जाए तो बहुत अच्छा। तो जहां पर जीवन में, व्यक्तित्व में गुण होते हैं, तो वहां पर हमने ये भी देखा है कि जो गुणवान व्यक्ति होता, लोग उनके करीब आना चाहते हैं। और लेकिन ये भी देखा गया कि एक बार जो व्यक्ति उनके करीब पहचान नहीं है और पहचान ले, फिर उनको करीब लाना वो तो आसान है, पर जो समीप हैं उनको अपने समीप बनाए रखना, जो जितना जितना हमको और जानते हैं, पहचानते हैं, उतना ही हमारे लिए उनका प्यार बढ़े, उनका रिस्पेक्ट बढ़े, ये जीवन की एक टोटली अलग सब्जेक्ट है। नहीं तो जैसे कहा जाता है इंग्लिश में कि फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, कि शायद किसी व्यक्ति को जानते जाएं तो फिर गुणों के साथ साथ समीप कार्य करने से अवगुण भी बढ़ते जाते हैं। तो ये एक और शिक्षा हमने बहन की जीवन किताब से ही पाई है, जहां पर हमें बहन कहते हैं कि जो जितना हमारे करीब आए उतना उतना वो हमको और प्यारा पाएं, और हमारे में गुणों को देखें, और हमारे व्यक्तित्व में उनको एक दिव्यता के दर्शन हो, या एक अच्छी मानवता की, प्यार की भावना उनके जीवन में, हमारे जीवन से उनको मिलते जाए। नहीं तो दुनिया का तो कायदा है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, और नजदीक आते हैं तो फिर वो संगीत नहीं महसूस होता, वहां पर फिर आवाज महसूस होता है। तो दूसरा ये हम जानना चाहते थे कि ये भी एक बहुत बड़ी जीवन की उपलब्धि है, या जीवन की मैं कहूंगी साधना भी है, कि जो हमारे करीब हैं वो हमारे, उनका हमारे प्रति का रिस्पेक्ट बढ़ता जाए। नहीं तो कई लोग कहते हैं ना कि इनका व्यक्तित्व कैसे हैं, तो कहेंगे वाइफ से पूछ लो, या कहेंगे हस्बैंड से पूछ लो। हाँ, तो वो जो नजदीकी रिश्ते हैं हमारे, उसमें सभी का प्यार बढ़ता जाए, उसके लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे हम अपना व्यक्तित्व ऐसा बना सकते हैं?
जैसे कुछ व्यक्ति होते हैं जिनके संपर्क में और कार्य के लिए बहुत कम समय उनके साथ रहते हैं, तो नेचुरली है कि उस समय पर हर व्यक्ति एक अपनी अच्छी इम्पैक्ट डालना चाहता है, और थोड़ा सा समय है तो अपने आप में अच्छे पेश भी आ सकते हैं और आते हैं। लेकिन जब बहुत लंबा समय उन्हीं के साथ कार्य करना हो और उनके संपर्क में रह करके जीना हो, तब व्यक्ति की ओरिजिनलिटी, आत्मा के जो संस्कार, रियल संस्कार हैं, वो उस वक्त पर क्या होते हैं, बाहर आते हैं, और वो समझ में आते हैं। थोड़े समय का संपर्क तो अच्छा ही लगता है, लेकिन बहुत लंबे अरसे तक उनके संपर्क में आए और फिर अच्छाई नजर आए उसमें भी, और इसीलिए अल्पकाल के लिए किससे मिले या लंबे अरसे तक भी किसी के साथ कार्य करें, तो जो हमने अल्पकाल के लिए थोड़े समय के लिए जो हमारा व्यवहार, जो हमारी भाषा, जो हमारे कर्तव्य थे, वो ही लगातार मेंटेन रहे, मैनेज करे उसको और उसी तरह बने रहे, और वो तब पॉसिबल है जबकि उसको नेचुरल बनाया जाए। नेचुरल चीज होती है उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती या नहीं अटेंशन कोई देना पड़ता है। जैसे आप सबके भी संपर्क में कुछ आएंगे कि जिनका नेचर ही होता है कि कम बोलना और धीरे से बात करते हैं, नेचर ही ऐसा है। अभी उनको प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है, जब भी आप बात करोगे वो बहुत आराम से धीरे से स्लो ही बोलेंगे। और अब जिनको जोर से बोलने की आदत हो, तो वो कुछ समय उनको कहा गया हो तो वो मैनेज कर लेता है, लेकिन बाद में तो ओरिजिनल टोन, कितना अच्छे से आप जवाब दे रहे हो, देखो ओरिजिनल चीज है वो बाहर आ ही जाती है। इसलिए इस विद्यालय में बहुत अच्छी शिक्षा ईश्वर देते हैं हमें कि जिस गुण को आप अपने जीवन में अपनाओ, एडॉप्ट करो, उसको नेचुरल बना दो, आपकी वो नेचर ही बन जाए, जो सामने वाले को लगे कि भाई इनकी नेचर ही शांत है। अब है ही ऐसे तो दूसरी बात कहां से हो सकती है, तो उसको यहां इस प्रकार से गुणों को अपने जीवन के अंदर अपनाना है कि मेरी नेचर ही मैं बना लूं। तो फिर थोड़े समय संपर्क में आए, चाहे कायम भी भले मेरे साथ कार्य करे, तो वही चीज उनको क्या होगी, नजर आएगी, वही व्यवहार देखने को मिलेगा। और हमेशा जो बहन ने कहा, मैं बहनों से भी जब ज्ञान की चर्चा होती है तब कहती हूं कि भाई दूर थे तब तो अच्छे लगे, लेकिन नजदीक आने के बाद अच्छा लगे वो है रियलिटी, है वही है सत्यता। ये तो कई बार कोई कहते हैं फलाना व्यक्ति बहुत अच्छा, कहते हैं आपको क्या मालूम, मेरे से पूछो, मैं उनके साथ रहता हूं है वो तो आपके थोड़े समय संपर्क में रहते हैं, मेरे से पूछो ना, मेरा रोज का उनके साथ रिश्ता है ना। इसीलिए रोज भी हो तो भी हमारी वही पर्सनालिटी, हमारा वही व्यवहार, वही भाषा, हम ऐसी गुण को अपना लें, नेचर बना लें, जो हमें दूर हो साथ रहे कोई फर्क नहीं पड़ सकता, वही चीज जो पहले मिली थी बाद में नजदीक आने के बाद वही देखने को मिलेगी, उसमें डिफरेंस नहीं होगा।
बहुत अच्छी पंक्तियां हमने इस संदर्भ में कहीं पढ़ी थी कि जहां पर पद की बात है या बड़प्पन की बात है या लोगों का दिल जीतने की बात है, तो किसी ने लिखा कि बड़प्पन वो गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है, परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। तो जैसे कहा कि जो करीब हैं, तो बहन आपने कहा कि हमारी नेचुरल नेचर ऐसी बन जाए गुण युक्त, या जैसे कहा मधुरता युक्त, सम्मान युक्त, तो नेचुरल नेचर बनाने के लिए कहीं ना कहीं जो अभी नेचर नेचुरल रूप में कार्य कर रही है उसको चेंज करने की भी जरूरत होती, जहां कहीं गुस्से की नेचर होती या कहीं ट्रस्ट नहीं रखने की नेचर होती या अपना कार्य कर लेना लेकिन कोऑपरेशन देने की या मदद देने की भावना की नेचर नहीं होती, तो अब इस नेचर को बदलने के लिए फिर हम क्या एफर्ट करें कि जिससे हम नेचर बदलें और नेचुरल नेचर हमारी बहुत प्योर लविंग कोऑपरेटिव बनाए।
उसके लिए है जो मैंने कहा कि नेचुरल नेचर आपकी मधुरता की है। अब आप सभी जानते हैं कि कोई उसका बेनिफिट लेता है भाई, ये तो गुस्से होने वाले है नहीं, या तो कड़वा बोलने वाले नहीं है, जोश से रौब से ये बोलने वाले नहीं है, तो हो सकता है कि उनका फायदा उठाने की कोशिश करें। तब मैं कहती हूं कि उसमें गुस्सा करने से, जोर से बोलने से या डांटने से हो सकता है कि उस समय पर डर के मारे वो व्यक्ति कोई कार्य कर भी ले, लेकिन मेरे प्रति उसकी भावना क्या रहेगी, रिस्पेक्ट इंटरनली। और यह बहुत अच्छा ईश्वर ने कहा है कि शायद वो रिस्पेक्ट देगा आपकी पोस्ट के पोजीशन के हिसाब से, लेकिन वो लंगड़ा मान देगा, रिस्पेक्ट रखेगा अंदर नहीं है, बाहर रखना पड़े इसीलिए वो देगा, लेकिन अंदर का रिस्पेक्ट क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए कि उसका कोई बेनिफिट ले रहा हो ऐसे हमको लगता है, तो मैं ये सोचती हूँ गुस्सा करने से, जोर से बोलने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन वहां जो मैं अपनाती हूँ कि स्ट्रिक्टनेस, स्ट्रिक्ट रहना जरूरी है, क्योंकि ऐसे ही नहीं ना कि हमारा कोई बेनिफिट ले ले, ये भी तो हमें देखना है, और उसके लिए स्ट्रिक्ट होना जरूरी है, लेकिन गुस्से से नहीं और मेरे शब्दों को बिगाड़ने के नहीं, स्ट्रिक्टनेस भी शांति से और प्यार से। देखो आपने ऐसा ये किया है ना, अभी नहीं करोगे तो फिर ये बात ऐसे नहीं हो पाएगी और नहीं होगी, अंडरलाइन करो, लेकिन मेरी मेंटल स्टेज को मुझे नहीं बिगाड़ना है और एक्शन पूरे लेने हैं कि आपने ये किया है, ये बेनिफिट आपको जो होना था वो नहीं होगा और नहीं देने का, तो क्या हो जाता है, परिवर्तन करने की प्रेरणा मिलती है। अब वही चीज मैं गुस्से से कहूं, मैं जोर से कहूं, अरे तुम सुनते ही नहीं हो, मेरा माथा ही खराब कर देते हो, ऐसा करते हो वैसे करते हो, बहुत कुछ बोलना पड़ेगा, मेरी एनर्जी मुझे शब्दों की बहुत यूज करनी पड़ेगी, मेरी अपने संस्कार को भी मुझे बिगाड़ना पड़ेगा, मेरी हैबिट भी तो बिगड़ेगी ना, मुझे तो लॉस होगा उसका, और रिलेशन भी बिगड़ेंगे उनके साथ। इसलिए कई बार कुछ बहनें कहती हैं कि देखो शिक्षा तो आप भी देते हो, समझाते तो आप हो, लेकिन आपका है ना इतना बुरा नहीं लगता है हमको। मैं कहा क्यों नहीं लगता है, कहते आप बिठाते हो धीरे से, प्यार से समझाते हो, तो हम अभी शिक्षा भी खराब नहीं लगती है, अच्छी लगती है, इसलिए हमारा तरीका हमारे ओरिजिनल संस्कार जो है उनको ले करके एक्शन जरूर लेने हैं, लेकिन हमारी मानसिक स्थिति को और मेरे जो अच्छे बने हुए संस्कार हो उसको मुझे बिगाड़ के काम नहीं करना है, और उसको बिगाड़ करके काम कोई अच्छा नहीं हो जाने वाला है, काम भी मेरा, रिलेशन भी बिगड़ने वाले हैं, कार्य भी बिगड़ने वाला है, और मेरे प्रति का प्यार स्नेह और कॉपरेशन की उनकी जो भावना है वो भी क्या होगी, समाप्त होगी, तो उनके लॉस के साथ मुझे कितने लॉस होंगे, उनसे तो क्यों नहीं मैं शांति से प्रेम से समझा करके स्ट्रिक्ट। हम छोटे भी थे, कहते भाई ये आपने गलती की, आज खाना नहीं मिलेगा, अब उसमें फिर मोह माँ बाप को आ जाए, नहीं नहीं माना नहीं, क्योंकि ऐसा किया है ना, उसमें स्ट्रिक्ट रखो, गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं, ऐसे मैं समझती हूँ। तो इस तरह से हमारी चीजों को एक बहुत अच्छी विधि से अपना करके हम अपनी लाइफ के अंदर चले। तो उनको भी बेनिफिट है और हमको खुद को भी उनसे क्या होगा, फायदा होगा।
तो बहन शायद यही बता रहे हैं कि जिस धागे की गांठ खुल सकती है उस धागे पर कैंची नहीं चलानी चाहिए। कितना हमें आपस में आत्मीयता से और अपनेपन से कार्य को तो संभालना है, कई बार हम ये अवेयरनेस को खो देते हैं कार्य को संभालने के साथ साथ जो कार्य करने में हमारे साथी हैं उन साथियों को भी हमें संभालना है। वो तो एक कार्य है जो जीवन के बड़े लेसन में एक अपॉर्चुनिटी के रूप में, शायद एक चैप्टर का एक हिस्सा या पूरी स्टोरी का केवल एक चैप्टर ही रहेगा, लेकिन जिन लोगों के साथ हम कार्य कर रहे हैं वो तो हमारे साथ कहीं और आने वाले कार्य में भी, कहीं और आने वाले सीन्स में भी हमारे मददगार रहेंगे। तो इसीलिए जो ये कहा कि भाई हम अपनी बात बताएं तो सही, लेकिन प्यार से बताएं, रिस्पेक्ट से बताएं, स्ट्रिक्ट रहें, पर अपनी एनर्जीज को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस होकर के हम भी उस प्रकार की बातों को यूज करने ना लगें। तो आध्यात्मिकता को जीवन में अपनाने के लिए बहन हम देख रहे हैं सब प्रोफेशनल्स हैं, सब सोच रहे होंगे हम गृहस्थी हैं, हम प्रोफेशनल्स हैं, तो हमारे लाइफ में भी कई बातें आती हैं और इन सभी बातों के साथ जो बातें हम यहाँ पर सुन रहे हैं उन बातों को प्रैक्टिकली अप्लाई करना, मन में ये भी प्रश्न आता कि क्या ये पॉसिबल है, और अगर है तो किस प्रकार से पॉसिबल है कि यहाँ से रिट्रीट करके जाएंगे वर्क प्लेस पर तो इन बातों को प्रैक्टिकली अप्लाई करने में चैलेंजेस आएंगी। और सबसे पहली चैलेंज तो मन में आएंगी कि हम कर सकते हैं या गुस्सा तो गुस्से बिना चल नहीं सकता, इस प्रकार से। तो इन चैलेंजेस को कैसे पार करें और क्या प्रैक्टिकली स्पिरिचुअलिटी वर्क प्लेस पर भी पॉसिबल है, निजी परिवार में पॉसिबल है?
जो कहा कि यहाँ जो बातें सुनते हैं दिल को छूती तो है, छू रही है, अच्छी लग रही है और इच्छा भी है कि हम वैसे ही चलें, वैसे ही जो अच्छी बातें हैं उनको ले करके चले, अच्छा लगता है तो इच्छा तो होती है उसको यूज करने की ना। लेकिन चैलेंज इसलिए है कि इसके पहले अभी आज हम सोच रहे हैं, लेकिन उसके पूर्व हम अलग तरीके से पेश आए हैं, जो वो भी हमारी हैबिट बन गई है, वो संस्कार हमारे क्या हुए हैं, ऑलरेडी बने हुए हैं, अभी उसको चेंज करना है, इसलिए चैलेंज तो है ही। और एक दिन में या कुछ घंटे में ये चेंज हो जाएंगे ऐसा नहीं होता है, उसकी भी प्रोसेस है। एक रोटी भी बनती है तो उसकी पूरी विधि है, उसको वक्त लगता है तब वो तैयार होती है। अब इस नेचर को बनाने के लिए भी हमें प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ने? पहले तो कोई एक बात को हम अपने जीवन में फोकस कर लें कि मेरे को क्या करना है, किस गुण को अपनाना है, किस वैल्यू को मुझे ले करके चलना है और कहाँ कहाँ हमें अपनी दिनचर्या का, हमारे इर्द गिर्द रहने वालों की नेचर का भी हमें पता होता है। तो कहाँ कहाँ व्यवहार में, कर्मों में ये चैलेंज आने की संभावना कहाँ कहाँ है पहले से पता होता है ना, तो वहाँ हम भी पहले से सावधानी रख करके चले। कई बार उसमें सफल होंगे, कई बार नहीं भी होंगे, लेकिन हम लक्ष्य रखेंगे कि मुझे ऐसे करना है तो धीरे धीरे परिवर्तन अपने आप में, प्रैक्टिस से ही व्यक्ति परफेक्ट बनता है। एक ही दिन में तो कोई परफेक्टनेस किसी भी चीज में आ नहीं जाती है, जो सिचुएशन मेरे सामने आएगी मुझे इसी प्रकार से ही पेश आना है, उसकी प्रैक्टिस में जारी रखूं। हाँ, कुछ परसेंटेज सक्सेस मिलेगा, कुछ नहीं भी मिलेगा, लेकिन उसमें नर्वस होने की बात नहीं है और हमारी अच्छाई को छोड़ने की बात नहीं है। आज इतने आज बच्चे पढ़ाई करते हैं और जिस वर्ष में एग्जाम दी पास नहीं होते तो नेक्स्ट टाइम प्रयत्न करते हैं ना, छोड़ थोड़ी देते हैं पढ़ाई को। ऐसे हमारी लाइफ में भी पहले के संस्कार हमारे पर हावी होने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी जो चेंज लाना है उसको बार बार जारी रखने की, जितने परसेंटेज मुझे सफलता मिले उसको जारी रखने की कोशिश करूं, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो चेंज हमारे जीवन में आ जाएगा, बदलाव। तो इस चैलेंज को हम ना पास कर सकेंगे, उसमें सफल हम हो सकेंगे। और एक बार तो हमें हिम्मत का कदम उठाना तो पड़ेगा ही। और अच्छे कार्य में जब हिम्मत हम करते हैं तो कहते हैं ईश्वर भी कई गुना हमें मदद करता है। और हमारे सोच में वो बात आ गई और वही विचारों को, आज हमारे सुबह का जो लेक्चर था उसमें बहुत अच्छी बात थी कि कोई चीज को सोचते हो बार 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 और उसका वर्णन करते हो तो अपने आप में आपका वो स्वरूप बन जाता है। इसलिए इस विद्यालय में सिखाया जाता है, समझो मेरी भाषा कड़वी है, मैं मधुर भाषी बनना चाहता हूँ। ओरिजिनल तो मेरी नेचर है ना, मधुरता मुझे बहुत पसंद है, आगे मुझे मधुर ही बोलना है। मिठास कितनी अच्छी चीज है, खाने में मिठास अच्छी लगती है ना, तो भाषा में भी मिठास सबको, बोलने वाले को भी प्रिय होती है, सुनने वाले को भी मिठास प्रिय होती है, और मुझे मीठा बनना ही है। ओरिजिनल तो मैं हूं ही मीठा और अभी रहूंगा बनूंगा, ये बार 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 सोचेंगे ना तो धीरे धीरे मधुरता आना शुरू हो जाएगी ना? ये प्रैक्टिस हमें अपनी लाइफ में करनी पड़ेगी।
तो दो बातें बताई, एक तो हिम्मत का कदम, कि जब हम हिम्मत रखते हैं, जैसे कोई कार्य करने की हिम्मत, इसी प्रकार से अपने संस्कार को बदलने की हिम्मत, अपने संस्कार का परिवर्तन करने की हिम्मत, जब हम ऐसी हिम्मत रखेंगे तब हम उस यात्रा को शुरू कर सकेंगे। और फिर जैसे कहा कि अपने सोच से, अपने संकल्पों से, उस बातों को अपने संकल्पों में अपनाते अपनाते रिवाइज कराते कराते फिर हम उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर आते हैं। और देखा जाए, हम भी जैसे सुन रहे थे तो सोच रहे थे कि शायद मधुरता को अपनाने के लिए, नम्रता को अपनाने के लिए, शांति को अपनाने के लिए हमें कोई अलग से समय निकालने की तो आवश्यकता नहीं पड़ती। हम कार्य कर रहे हैं, हम व्यवहार में आ रहे हैं, क्या उस समय पर हम इन गुणों को यूज नहीं कर सकते? कर सकते हैं। सो दैट इज वेयर वी इंटीग्रेट स्पिरिचुअलिटी विथ आवर प्रोफेशनल लाइफ। कोई अलग से एक बार आप रिट्रीट करने माउंट आबू आ गए, हर बार तो नहीं आ सकते, लेकिन यहां जो लेकर जा रहे हैं उसको हम दिन प्रतिदिन अपने अपने कार्य में जितना यूज करते जाएंगे उतना उतना हमारी लाइफ में वो स्पिरिचुअल फ्लेवर आता जाएगा। और आजकल ये स्पिरिचुअल फ्लेवर बहुत बहुत कम होता जा रहा है, बहुत रेयर होता जा रहा है। तो ये बात सुनते सुनते एक और बात छोटी सी, जो बहन कह रहे थे कि मधुरता का, कि भाई मैं हूं ही मधुर भाषी, ऐसे ऐसे सोच अपनाना, और अपने लिए भी कहा कि सभी गुणों में से अपने लिए बहन को मधुरता बहुत पसंद है। मैं अगर बताऊं तो मुझे बहन के चरित्र में नम्रता का गुण सबसे ज्यादा पसंद है। और इससे रिलेटेड एक बहुत प्यारी सीख भी, बहुत प्यारी लर्निंग भी याद आ रही, कि एक बार जब शेयर कर रहे थे, क्योंकि कई सारी चैलेंजेस आती हैं कार्य करते करते, तो बहन मुझे समझा रहे थे कि जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, कोई भी प्रॉब्लम, तो बहन बता रहे थे कि उसका अगर जड़ देखेंगे ना कहीं उसके बीज को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो उसका बीज होगा ईगो, चाहे एक तरफ से चाहे दूसरी तरफ से, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम है उसका बीज है ईगो। अब ये तो समझने की बात थी, लेकिन इसके बाद जो बात आई वो और भी एनलाइटनिंग थी। जो बहन ने मुझे कहा कि फिर व्यवहार कैसे करें, बिकॉज इट इज ऑल अ मैटर ऑफ ओवरकमिंग ईगो, तो कहा कि व्यवहार करते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम किसी के साथ व्यवहार करते हैं, जब भी किसी के साथ कोई कार्य मिल करके करते हैं, तो हमें कार्य ऐसे करना है, ध्यान ये रखना है कि उसका सोया हुआ ईगो जाग न जाए। तो ये बहुत वंडरफुल टिप है, बहुत आज तक जो बहुत सारी बातें सीखी है मैंने बहन से, लेकिन दिस हैज बीन द कोहिनूर, अभी तक की सारी शिक्षाओं में से ये शिक्षा मुझे सबसे ज्यादा प्रिय लगती है, और इसीलिए नम्रता का गुण भी बहुत अच्छा लगता। तो इससे फिर बात आती है कि कैसे हम ईगो, जब आता है ईगो सिचुएशंस आती हैं, तो सिर्फ सुनने सुनाने से, समझने से नहीं होता, प्रैक्टिकल झुकना होता, एक्सेप्ट कर लेना होता। तो इसके लिए कौन सी सोच हो, क्या सोच हम रखें कि जिससे हम अपने आप को एडजस्ट करके चला पाए, कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे जीवन में कम से कम हो। जरूर कोई सोच होंगे इसके पीछे, तो वो सोच कौन सी हो?
जब दो व्यक्ति या कई व्यक्ति मिल करके कार्य करते हैं, तो हर एक का सोचने का तरीका अपना अपना होता है, और हर एक व्यक्ति अपने सोच को तो सही और योग्य ही समझता है, इम्पोर्टेंट, मेरे विचार का ही महत्व है और वही सही है, वही ठीक है, वो हर एक को लगता है अपने सोच के लिए। और जब साथ में मिल करके कार्य करना है, तब उन्होंने दी हुई राय या उनका कार्य करने का तरीका, तो उसमें मैं इस प्रकार से सोचती हूँ कि कोई कार्य है, मैं कहूँगी ये गुलदस्ता बीच में रखो, वो कहेंगे कि यहाँ साइड में रखना है, जो मेरी अपनी विधि है। तो मैं उस समय पर सोचती हूँ कि अब सही तो यही है, लेकिन उनको वही सही लगता है, अभी न उनको नुकसान है न मुझे नुकसान है, तो मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, वहां रख लो, इधर रखोगे तो क्या फर्क, अब उसमें टकराने की जरूरत नहीं है ना, अभी उनको लगता है ठीक है यहां रख दो, उसमें बहुत कुछ फर्क पड़ जाने वाला नहीं है, तो फिर चला लेना चाहिए। वहां भी फिर हम कहें नहीं ऐसे ही करो ऐसे ही करो, तो सामने वाले को लगेगा कि ये अपना ही चला रहे हैं, तो उसका ईगो हर्ट होता है और ही व्यक्ति जिद में आ जाता है, और नहीं ऐसे ही होना चाहिए ना, अभी उनसे बहुत कुछ नुकसान होने वाला नहीं है, तो ओके वैसे कर लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। इस प्रकार से पेश एक तो आना चाहिए। दूसरी बात है कि कहाँ कहाँ ऐसे हो कि वो कहें वो ठीक नहीं है, लेकिन उस बात को हमें इस प्रकार से उनको कहना है जो बहन ने कहा भी, ईगो न जागृत हो जाए, हमें अपनी बात मनवानी है, करवाना है, और वैसा ही योग्य है इसलिए वैसे ही करना है, लेकिन हमारा कहने का तरीका, मैंने कहा है ना ये चीज इधर ही रखो उधर नहीं रखनी है, अब ये जो पेश आएंगे ना उनका ईगो क्या होगा, जाग जाएगा ना, कहेंगे क्यों ऐसा, हम कहते हैं कुछ रॉन्ग है, ईगो को जगाने वाली बात हो गई। लेकिन उसके बजाय और तरीके से उनको कि देखो मैं बताऊं यहां रखेंगे ना, अब खुद भी देखो ना जरा कैसे लग रहा है, आपको कैसा लगता है, अच्छा दो चार को भी बुला लो ना, अब वो सब ऐसे कह रहे हैं तो ये करना ठीक लग रहा है ना, और उसमें क्या फर्क पड़ेगा, आपको इधर पसंद है इधर रखा कोई फर्क तो नहीं पड़ना, तो ऐसे कर लो ना, अभी ऐसे नम्रता से उनके साथ पेश आएंगे ना तो वो एक्सेप्ट करना इजी होता है। लेकिन हम उसी चीज को ऑर्डर के रूप में कहेंगे, फोर्सफुली कहेंगे, तो वो एक्सेप्ट करना सत्य समझ में आता भी हो उनको, लेकिन अभिमान के कारण उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होंगे, लेकिन उनका रिस्पेक्ट रखते हुए यदि उस चीज को हम कहते हैं तो मैंने देखा है कि एक्सेप्ट करने के लिए सामने वाली व्यक्ति वो तैयार हो जाती है। इसलिए और आजकल वर्तमान कलयुग में तो सबका अभिमान कहाँ तक चोटी तक पहुंचा हुआ होता है, है ना? हर एक छोटे बच्चों को भी देखो, कितने छोटे भी हो। एक बार एक बच्चा आया ना, तो मैंने बुलाया कि चॉकलेट लो, और जब नजदीक आया ना, मैंने थोड़ा ऐसे कर लिया, चला गया। फिर मैंने कहा नहीं आओ, अभी मुझे नहीं चाहिए चॉकलेट, अभी मेरे को नहीं लेनी है। मैंने कहा देखो इतना छोटा बच्चा, जो चॉकलेट तो उसको प्रिय है, लेकिन एक बार आपने देते हुए उससे दूर कर दिया, नहीं दिया, अब दोबारा लेने के लिए तैयार नहीं है, तो समझ में आता है ना ईगो, अभिमान समझ में आता है ना छोटे छोटे बच्चों को। तो इसी प्रकार से व्यक्तियों के साथ भी हमें इस तरह से ही ना पेश आना होगा, जो कहा कि ईगो को जगा के काम नहीं, लेकिन समझा करके काम लेना होगा।
तो इसीलिए किसी ने बहुत अच्छा लिखा है कि बातों से बात नहीं बनती, कुछ करके दिखाना होता है। सिर का झुक जाना ही काफी नहीं, मन को भी झुकाना पड़ता है। व्यवहार में अपने को बदलना, सबको अपना बनाना, यही जीवन जीने की कला है, यही व्यवहार की कला है। साथ साथ आध्यात्मिकता हमको ये भी सिखाती है, क्योंकि यहाँ पर मन की बात आई कि मन को हमें मोड़ना है। तो परिस्थितियाँ तो आती हैं जीवन में, और किसी का भी जीवन परिस्थितियों से तो दूर नहीं रह सकता, अछूता नहीं रह सकता है। और यहाँ पर भी हम ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में सीखते हैं कि परिस्थिति का प्रभाव जो है वो हमारे मन की स्थिति पर जरूर पड़े, लेकिन मन की स्थिति का प्रभाव जो है वो परिस्थिति को चेंज कर दे, न कि हमारी मन की स्थिति परिस्थिति से इन्फ्लुएंस हो जाए। तो एक तो ये होता कि इस बात को हम ज्ञान के लेवल पे समझे, थ्योरी के लेवल पर समझे कि हाँ बाहर की परिस्थिति है, उसका इन्फ्लुएंस मन पर नहीं पड़ने देना है। योग राजयोग का अभ्यास करते हैं, मेडिटेशन के लिए हम सभी को प्रॉम्प्ट भी इसीलिए करते हैं, एनकरेज इसीलिए करते हैं कि मेडिटेशन से हमारी बुद्धि स्थिर बनती है, सही निर्णय ले पाते हैं, बहुत क्लैरिटी हमारी लाइफ में आती है। लेकिन इस थियोरी नॉलेज को समझने के लिए, बेटर समझने के लिए, जब किसी के लाइफ का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ही जान लेते हैं तो बहुत ईजी हो जाता उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना। तो इसीलिए बहन ये पूछना चाहेंगे कि परिस्थिति हो लेकिन हम मन की स्थिति ठीक रख सके, सही निर्णय ले सके, ऐसे आप अपने जीवन का कोई प्रैक्टिकल अनुभव हमारे साथ शेयर करें।
जब परिस्थिति की बात कही तो ये संसार है ही समस्याओं का सागर है, और कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जिनके सामने कोई बात न आती हो। और हर एक व्यक्ति को ही होता है कि मेरे मन की जो इच्छा है, मेरा जो सोच है वैसा ही हो, हर एक के मन में रहता है ये इच्छा। तो हर समय हमारे मन के हिसाब से हर कार्य हो, और नहीं होता तब मन क्या हो जाता है, ऐसी परिस्थिति आई मेरी इच्छा एक है, हो रहा है दूसरा, तब मन डिस्टर्ब हो जाता है और मन अशांत हो जाता है, अस्थिर हो जाता है। और ऐसी मानसिक स्थिति में जब किसी भी प्रकार का निर्णय लेते हैं तो वो योग्य नहीं होता, सही नहीं होता है। ऐसे मेरे अपने जीवन का एक उदाहरण है कि बॉम्बे में जहाँ रहते हैं, सेवा करते हैं, वहाँ एक बड़ा मकान बनाना था जिसको हम भवन कहते हैं, और बहुत इच्छा थी कि इतने सारे भाई बहनों के बीच में एक ऐसी चीज होनी चाहिए, सेटअप हमारा, कि जो सबके ज्ञान ध्यान योग न आने वाले रेगुलर उनकी उन्नति हो, नयों की भी सेवा हो, और उसके लिए प्रयास चालू था। तो भिन्न भिन्न जगह पर हम स्थान को देखते थे और ये तो सोचती हैं कि अपनी जो कैपेसिटी हो उस हिसाब से ही हमें सोचना चाहिए। तो हमने सोचा 5000 स्क्वायर फुट की जगह एक इंडिपेंडेंट ऐसी बने और ढूंढना शुरू किया। तीन जगह पर ऐसे हुआ, जगह देखी, पसंद आई और कहते हैं टोकन न पक्का करने के लिए टोकन देते हैं, पैसा दिया, लेकिन लीगली कोई ना कोई प्रॉब्लम आए जो हम ले नहीं सके। एक ऐसा, दूसरा हिस्सा ऐसा, तीसरा किस्सा भी ऐसा बना कि जो नहीं ले पाए। तो मेरे साथ में बहनें थी कि बहन ऐसे ये हो रहा है, हम लोग तो बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं। कहते हैं आपको देखते हैं आपको कुछ नहीं होता है। मैंने कहा कि ये जो जो बातें आ रही है सामने, अभी संकल्प है और अंदर दृढ़ता थी कि ये होना तो है ही, होके ही रहेगा, लेकिन उसके बीच में जो बातें आती हैं तो उनसे डिस्टर्ब होने से तो कोई काम होने वाला नहीं है। इसलिए मैं बहुत स्टेबल रहती थी और आगे प्रयत्न करो। और मैं कहती थी, फिर ये कहते थे कि बहन ये कैसे बॉम्बे जैसे जगह में, काफी खर्च भी वहां जमीन आदि का। तो मैं कहती थी कि मुझे अंदर लगता है कि कोई हरि का लाल आएगा और वो ये कार्य करेगा और होना है, और ये कुछ हो रहा होगा उसमें कुछ कल्याण है, कुछ भला है, क्योंकि आगे हम और अधिक पैसे दे करके फंस जाएंगे तो उससे निकलना भी शायद मुश्किल होगा। अभी हमें इस चीज का पता नहीं होता है, इतनी दुरान देशी बुद्धि हमारी नहीं है, लेकिन ईश्वर जानता है, हमारे संकल्प को जानता है और उस चीज को भी जानता है, इसलिए वो हमें सेफ रख रहा है, सेफ्टी के लिए हमारे हो रहा है। और सचमुच ऐसे हुआ कि जिस स्थान पर हम थे वेस्ट में, वहां रेलवे के ईस्ट वेस्ट होती है, तो वेस्ट में ही हम जगह देख रहे थे, ईस्ट में हम देख ही नहीं रहे थे जगह, क्योंकि वहां भाई बहने ज्यादा था तो नेचुरली वहां सोचते थे। और फिर एक बिल्डर भाई वहां ज्ञान में चलने लगे और उन्होंने ईस्ट में एक बहुत बड़ा प्लॉट लिया, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स। तो उन्होंने कहा कि बहन देखो आपको ये जगह पसंद आती है, तो ईस्ट में तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैं गई और स्थान देखा, अच्छा लगा, कुछ भाइयों को भी बताया और वो जगह मुकरर हुई। तो उससे मैंने ये सीख ली, एक तो ये शिक्षा मैंने पाई उससे कि मैं है ना 5000 स्क्वायर फुट ही बनाना चाहती थी क्योंकि कैपेसिटी के अनुसार, और अभी जो जगह बनी है वो 18000 स्क्वायर फुट बनी है। अभी भगवान को ये करना होगा 18 और मैं 5 में ही फंसी थी, है ना। और तब से लेके मैंने पक्का कर लिया है अपनी लाइफ में कि जो कुछ करना है संकल्प करो, लेकिन ईश्वर को है ना बंधन में मत बांधो, यहां ही और इतना ही। मैं वेस्ट में चाहती थी ये बना ईस्ट में, 5000 चाहती थी ये बना 18000, तो मैं ईश्वर को बांध रही थी ना, तो बंधन में नहीं बांधना है उनको। और ये सोचा कि हम और जगह जो देख रहे थे वो बिल्डर्स या वो व्यक्ति हमारे कोई बहुत संपर्क में या तो थे नहीं, आगे चल के कुछ भी धोखा हो सकता है इसमें, लेकिन ये भाई थे जो रेगुलर आने लगे। तो फिर निर्णय लिया कि भले वेस्ट में नहीं ईस्ट में ही भले बने, लेकिन अपना भाई है तो हमें किसी भी प्रकार का डर या उसमें भय नहीं होगा। और कई प्रकार का कोऑपरेशन उन आत्मा से क्या हुआ बनाने में मिला। उसके साथ साथ मैंने ये शिक्षा ली कि आज हम कोई और प्लॉट ले लेते, वहां बना भी लेते, लेकिन जिनसे लिया उसकी भावना क्या, बनाने वाला उसकी भावनाएं अंदर की क्या है, वो भी उस स्थान में काम तो करती है ना, और ये भाई यहाँ आने वाला था, उसके जिगर में था कि ऐसी कोई सेवा की जगह मिले। तो उनकी भावना कितनी अच्छी, जमीन देने वाले की, बनाने वाले की कितनी अच्छी भावनाएं। तो ऐसी अच्छी भावनाओं से कोई स्थान मिले, बनाने वाला अच्छी भावनाओं से बनावे, तो एक वाइब्रेशन भी वहां पर क्या होते हैं अलग। अभी भगवान को ये करवाना था, मैं तो कुछ और सोच रही थी। इसलिए कहते हैं नर चाहत कुछ और कुछ और की और भाई, है ना। इसीलिए मन को शांत रख करके जो हो रहा है उसमें अच्छा ही है, कुछ भला है जो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, भगवान मेरी भलाई को जानता है और वो मुझे अच्छे से पहचानता है। बाप है ना मेरा, मेरी नेचर को अच्छे से वो जानता है और इसीलिए वो अच्छे से मुझे हेल्प करना चाहता है, तो उसको मैं एक्सेप्ट करूं। और इसलिए निर्णय लिया कि हमें यहाँ ये कार्य करना है। ओम शांति।
तो परिस्थिति के बीच भी सकारात्मक सोच की, शायद इसमें भी कुछ भला है, इसमें भी कुछ भला है, शायद इससे कुछ और अच्छा होने वाला। तो एक तो पॉजिटिव सोच, और दूसरा जो हमने देखा वो भगवान पर भरोसा कि वो मेरी इच्छाओं को जानता है और वो जो मुझे देना चाहता है वो प्राप्त करने के लिए मुझे भी ओपन रहना है। तो इसीलिए एक इंग्लिश में भी कहावत है जो याद आ रही है कि गॉड विल ऑलवेज गिव यू द गिफ्ट यू वॉन्ट, बट ही विल नॉट ऑलवेज रैप इट इन योर फेवरेट कलर। कि भाई जो चाहिए वो तो देंगे, लेकिन जिस रूप से हमने उसको सोचा था कि स्वरूप से वो मेरे पास आएगा, शायद उस स्वरूप से वो चीज हमारे सामने नहीं आती है। तो इससे आप चलते हैं परमात्मा के प्रति प्यार, परमात्मा के प्रति विश्वास की जो बात है। हमने देखा है कई ऐसे सफल व्यक्तित्व हैं कि जिन्हों के जीवन का जो फाउंडेशन है वो फाउंडेशन भगवान पर भरोसा रहा है। तो एक लॉजिकली अगर सोच रहे हैं तो एक तरफ हम कर्म फिलॉसफी को समझते हैं कि हम जैसा करते हैं वैसा हम पाते हैं, जैसा हम व्यवहार करेंगे वही रेसिप्रोकेट होकर के वापस आएगा। तो एक तरफ कर्म फिलॉसफी है जो अपने स्थान पर सही है, राइट है, लेकिन उसके साथ साथ जब हम भगवान पर पूरा भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो ये भी एक वास्तविकता ही है जैसे हम इस अनुभव में देख रहे हैं। और मुझे यकीन है कि यहाँ भी बैठे हुए कई परमात्मा प्रेमियों के जीवन के अपने अनुभव होंगे कि परमात्मा की सही समय पर हमको सही मदद भी मिलती है। तो ऐसे भगवान को अपने जीवन में साथी बनाने में या उसको अपने जीवन में बांध लेने में हमारे में क्या क्वालिटीज होंगी जिससे हम भगवान से इतना समीप अनुभव अपने आप को कर सकें?
परमात्मा के समीप, अभी कुछ दिन पहले ही लेक्चर में था और जीवन का एक्सपीरियंस भी है कि बचपन से जब पिताजी से बात करते थे तो होता था कि भगवान को भी कहते हैं त्वमेव माता से पिता त्वमेव। तो मैं पूछती थी कि वो मात पिता है, मैं आप मेरे पिता हो, आपसे मैं बातचीत करती हूँ, उनसे भी तो मेरी बातचीत हो जाएगी ना, उनसे भी मैं कर सकती हूँ, उनसे भी मैं मिल सकती हूँ। इसलिए बचपन से ही मुझे था कि इस विश्व की हाईएस्ट अथॉरिटी और उन्होंने इस प्रकार से हमको बचपन से ही कि कुछ भी चाहिए नाट बात करिए हुआ नहीं था, और जब तक आप उसको नहीं पढ़ोगे तब तक आपको नहीं हुआ,
और माइंड परमात्मा से योग लगाती है, परमात्मा के प्यार का अनुभव कर पाती है, उन गीतों के बनाने के पीछे बहन का बहुत अच्छा योगदान रहा है। तो ये जो गीत है, संगीत है, साधना है, योग है, इसके पीछे जो परमात्मा है, गीत अलग होंगे, राग अलग होंगे, शब्द अलग होंगे, सुर अलग होंगे, लेकिन हम जानते हैं कि जो प्रवाह है वो परमात्मा के प्यार का प्रवाह है। परमात्मा से भी सही लगता है वही, और उनकी भेंट परमात्मा से जोड़ भी सकता है। और गैन के लोग संगीत अच्छा सा बनवाही नहीं लेते हैं, लेकिन गैन की बच्चे भी बॉडी लेते हैं। ज्ञान तो हमने आज से बहुत लिया और जितना ले उतना कम है, लेकिन कुछ शब्द कुछ सर्दियां भी आप सभी को प्रेरणा के रूप में देते हुए अगर आज के कॉन्वर्सेशन को हम कंप्लीट कर सकें। लड़की बहुत सोचता है कि संगीत कैसे अपने आप में साधना है, तो संगीत में साफ सीधा का एक संबंध है। और आध्यात्मिकता में जैसे हमने आज कल के सेशन में सुना कि आपकी जो सात गुरुओं से जीती है, तो सात सुरों से जो संगीत बनता है तो वो कितना सुंदर बनता है, लेकिन ये सात गुरुओं से जो हमारा जीवन बनता है वो कितना सुंदर होता, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि सात गुणों का जो समन्वय है, आत्मा के जो सात गुण है, उनकी जो आपस में कनेक्टिविटी है, थोड़ा सा उसका आप हमें शेयर करें।
देखिए गुणों की बात करें तो जीवन का अनुभव ये कहता है कि सारे गुणों का जो बीज है ज्यादातर वो प्योरिटी है। जहां देखा है कि प्योरिटी आती है वहां सत्यता आती है, जहां प्योरिटी होती है वहां मधुरता भी आती है, क्योंकि सच्चा होने लगता है ना। प्योरिटी माने सत्यता, सत्य होने लगता है, मधुरता आती है, प्योरिटी होती है, हर गुण एक दूसरे के साथ कनेक्टिव होते हैं। इसी तरह मैंने कहा था कि नम्रता अपनी नम्रता होगी तो क्या होगी, मधुरता होगी, निराशा जहां ईगो होगा वहां भाषा मधुर हो सकती है, पसीने नहीं है। और जहां मधुर नम्रता है वहां मधुरता है, तो फिर कनेक्टिव कहीं आती है, कोई व्यक्ति सरल होता है। मधुरता के साथ आती है सरलता, क्योंकि जहाँ सरलता होती है मैंने देखा है कि वहां पर सफलता भी होती है। जो सोच जो कार्य कर रहा हो उसमें क्या होती सफलता, और जहाँ सफलता है व्यक्ति जीवन में शांति का अनुभव, खुशी का अनुभव, सुख का अनुभव और शक्ति का अनुभव करता है। जहां प्योरिटी है मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट है कि जहां प्योरिटी है वहां सुख और शांति की जननी है। तो ये सारी चीजें हमें जब तक प्योरिटी नहीं हो तब तक ये गुण हमारे जीवन में डेवलप, जैसे बीज से ही वृक्ष होता है उसमें फल फूल वगैरह आते हैं, तो प्योरिटी होती है तो ये गुण है ना व्यक्ति के जीवन में निखर करके बाहर आते हैं, और तब व्यक्ति सर्वगुणों से भी संपन्न बन सकता है, उन गुणों के सुखों को भी मान ले सकता है। मैंने कहा है जो
Thank you.